आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है आयु कपिल और आज हम आपको पढ़ाएंगे आपकी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में अध्याय 2। आपकी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में पेज नंबर 12 पर चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 जिसका नाम है राजस्थान एक सामान्य परिचय। तो बच्चों आज हम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग ये इसलिए क्योंकि आज आपको अपने खुद के राज्य राजस्थान के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। आज आप जान पाएंगे राजस्थान को और ज्यादा करीब से, आप जिस राज्य में रहते हैं उसके बारे में आज आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, राजस्थान एक सामान्य परिचय। हमने पिछले अध्याय में हमारे देश भारत के बारे में पढ़ा। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हमारा राज्य राजस्थान स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? जिलों की संख्या कितनी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में खोजते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा राजस्थान है उसमें कितने भौतिक प्रदेश हैं, उसमें जिले कितने हैं, यहाँ का पर्यावरण कैसा है, यहाँ की जलवायु कैसी है। हमें हर तरह से अपने राज्य के बारे में आज पता चलेगा। ये हमें बताते हैं कि जो हमारा भारत देश है उसके उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था बच्चों के, जो लैंड एरिया है यानी क्षेत्रफल, उसकी दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है यानी सबसे बड़ा। तो नीचे देखो, इन्होंने भारत का जो मानचित्र दिया है उसमें राजस्थान की स्थिति दर्शाई है कि राजस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखो लाइन बनी हुई है, राजस्थान के पूरे एरिया को इन्होंने शेड किया है और राजस्थान के बगल में क्या है, पाकिस्तान है जो हमारा पड़ोसी देश है, और भारत के अंदर के जो राज्य राजस्थान से लगे हैं वो हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भारत की उपर्युक्त मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि राजस्थान की सीमा किस एकमात्र देश से मिलती है। तो किस एकमात्र देश से? भारत के पड़ोसी देश से राजस्थान की सीमा मिल रही है, पाकिस्तान से, है ना। और राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। तो उत्तर में क्या है आप बताओ कि उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं राजस्थान के? पंजाब, है ना, और हरियाणा भी लिख सकते हो आप। पूर्व में क्या है? पूर्व यानी ईस्ट, तो ईस्ट में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, या उत्तर प्रदेश आप खाली ईस्ट में लिखो। फिर दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश आ जाएगा और दक्षिण में गुजरात। नेक्स्ट पेज पे राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र प्रस्तुत है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इस वाले मानचित्र में या इस मैप में उन्होंने जो भी राजस्थान के सारे जिले हैं उन सबको दर्शाया है, उन सबका भी पूरा मैप बनाया है कि कौन सा जो जिला है उसका नाम लिखा है और वो कितना एरिया कवर करता है। तो जितने भी जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, ये सारे ही यहाँ पर जो जिले हैं वो दर्शाए गए हैं। तो राजस्थान के उपर्युक्त मानचित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाइए। तो एक तो आप ये सारे जिलों के नाम लिख के सूची बना सकते हैं राजस्थान के सारे जिलों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी व पश्चिमी जिलों के नाम लिखिए। तो जो सबसे उत्तरी हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं, जैसे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जाएंगे सबसे उत्तरी में, है ना। ऐसे ही सबसे दक्षिणी में आ जाएंगे बांसवाड़ा और डंगरपुर, आई गेस, हाँ जी, यही आ जाएंगे। इसके बाद पूर्वी और पश्चिमी जिलों के नाम लिखने हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिले हैं। तो आप पूरा, आधे से ज्यादा शहर आपको पता भी होंगे, आपने नाम सुने होंगे इन जिलों के, इन शहरों के। तो आपको ये बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीके से ये जो मैप है ये समझ आ जाएगा और फिर आप इन चारों ही क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि वर्तमान राजस्थान स्वतंत्रता से पूर्व 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त था। सन 1948 से 1948 1956 तक राज्य की तत्कालीन सभी रियासतों, ठिकानों एवं केंद्र शासित प्रदेश का एकीकरण कर आज की राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया। इसके विषय में विस्तार से आप इतिहास के अध्यायों में पढ़ेंगे। तो ये बता रहे हैं कि जो आज का राजस्थान हम देखते हैं, पहले ऐसा नहीं था। स्वतंत्रता से पहले बच्चों जो राजस्थान था वो 19 रियासतों में बटा था, 3 ठिकानों में बटा था और 1 केंद्र शासित प्रदेश भी था। फिर जब 1948 से 1956 तक राज्य की सभी ठिकानों को, रियासतों को और उस केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी चीजों को एक कर दिया गया, है ना, जब हमारा जो भारत है वो आजाद हुआ, फिर उसके बाद उन सबको एक कर दिया गया और हमें एक पूर्ण राज्य के रूप में राजस्थान मिल गया। इसका जो इतिहास है कि कैसे ये सारे रियासतों को और ठिकानों को, इन सबको एकीकरण इनका हुआ, वो सब हम अपने इतिहास के भाग में पढ़ेंगे, ठीक है। अब भौतिक प्रदेश दिखाए हैं राजस्थान के बच्चों। भौतिक प्रदेश से इसका मतलब है कि कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, है ना। तो वो दर्शाया है इस मैप में। जो येलो और डार्क येलो से है वो रेतीला शुष्क मैदान थार है, फिर डार्क ब्राउन से अर्ध शुष्क मैदान है, और जो थोड़ा रेडिश है वो अरावली पर्वत है, जो लाइट ग्रीन है वो मैदान है, और जो डार्क ग्रीन है वो हाथौड़ी का पठार है मैप में। तो इस मैप में आप देख सकते हैं जहां जहां जो कलर हो बच्चों, उस हिसाब से आप समझ जाओ कि वहां पे उसी प्रकार का भौतिक प्रदेश है। यानी वहां जैसे जो चंबल का मैदान है, देखो वहां पे एकदम लाइट ग्रीन है, यानी वो पूरा एरिया जो है वो क्या है, मैदानी इलाका है। फिर इधर मरुस्थली जो है थोड़ा डेजर्ट ब्राउन कलर, यहाँ पे आपका पूरा डेजर्ट रहता है, है ना, यानी पूरा आपका जो है रेतीला इलाका है, रेतीला मैदान है। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में। हमारा राज्य देश के एक विस्तृत भूभाग पर फैला है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत विविधता युक्त है। राज्य में स्थित अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान नवीनतम भूभाग है। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है, जो निम्न प्रकार से हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि इतने बड़े भूभाग पर, विस्तृत यानी फैला हुआ, तो इतने फैले हुए भूभाग पर हमारा ये राज्य राजस्थान स्थित है, और इसका जो स्वरूप है भौतिकता की दृष्टि से वो बहुत ज्यादा विविधता युक्त है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के भौतिक प्रदेश मिल जाएंगे, जैसे हरे मैदान भी मिल जाएंगे, पठार भी हैं, फिर शुष्क मैदान भी हैं, रेत भी है। तो इस तरह बहुत विविधता है राजस्थान के भौतिक स्वरूप में। जो राजस्थान है उसमें जो विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है अरावली पर्वत, वो भी स्थित है। तो दूसरी तरफ चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान भी स्थित है उत्तरी पूर्वी भाग में, है ना, जो नवीनतम भूभाग है। तो यहाँ आपको पुराने से पुराने पर्वत भी मिलेंगे और नए से नए मैदान भी मिलेंगे। भू संरचना जो है राजस्थान की, उसको हम 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं, और उन चारों भागों के बारे में इन्होंने अच्छे से बताया है जो अब हम पढ़ेंगे। पहला जो भाग है वो है थार का मरुस्थल, यानी थार डेजर्ट, जो पूरा रेतीला इलाका है, जो पूरा रेतीला मैदान है, मरुस्थल जिसको बोलते हैं, थार का मरुस्थल, उसके बारे में अब हम जानेंगे। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। यह राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। इसका ढाल पश्चिम में पाकिस्तान की ओर है। यह मरुस्थल विश्व के सभी मरुस्थलों की तुलना में अधिक जन घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसलिए इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। तो ये बता रहे हैं कि जो ये थार का मरुस्थल है, ये पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा से लेकर जो मध्य में राजस्थान में अरावली पर्वत की श्रृंखला है, वहां तक पूरा मरुस्थल फैला है। जो हमारे राज्य के 12 जिले हैं, उसमें लगभग 61% भाग पर ये फैला हुआ है। सोचो कितना सारे एरिया में, पूरा डेजर्ट, थार डेजर्ट पे फैला हुआ है राजस्थान में। और इस पूरे मरुस्थल वाले पार्ट में 40% यानी 40% जनसंख्या निवास करती है, और इसका जो ढाल है वो पश्चिम में पाकिस्तान की ओर है। ये कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी मरुस्थल हैं, उन सब में जो हमारा राजस्थान का थार का मरुस्थल है वो सबसे अच्छा और सबसे धनी मरुस्थल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से हर तरह की वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, जन घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता आदि हर प्रकार का जो एक तरह से रिसोर्स है वो मौजूद है। यानी यहाँ पे सारे संसाधन आपको मिल जाएंगे और किसी भी मरुस्थल की तुलना में, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर में स्थित मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी एवं रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन टीलों को बालुका स्तूप या स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। यहाँ मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है जिनकी लंबाई कम, पत्तियां छोटी एवं मोटी, तना छोटा, जड़ें गहरी होती हैं। प्रमुख वृक्षों में रोहिडा, इसका फूल राजस्थान का राज्य पुष्प है, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, पीलू आदि हैं। कैर, आक, थोर, लाणा, फोग, आरणा आदि प्रमुख झाड़ियां हैं तथा सेवण, धामण, करड़ आदि प्रमुख घासें हैं। कैर, फिर कहते हैं कि थार के मरुस्थल का अधिकांश भूमिगत जल खारा है। इंदिरा गांधी नहर से सतलज नदी के पानी को यहाँ पहुंचाकर क्षेत्र में जल संकट को दूर करने का प्रयास किया गया है। तो अब ये बताते हैं इस पैराग्राफ में बच्चों कि जो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित पूरा मरुस्थलीय इलाका है उसे कहा जाता है भारतीय महामरुस्थल यानी द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे रेतीली मिट्टी होती है और रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ उड़कर अपना स्थान बदल लेते हैं। यानी हो सकता है आज एक जगह रेत का टीला हो और हवा चल के रातों रात वो कहीं और स्थित हो जाए। और इन टीलों को बालुका स्तूप कहा जाता है, स्थानीय भाषा में इन्हें धोरे कहा जाता है। ठीक है, जो फूल और झाड़ियां और पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, जिनमें से दो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रोहिडा, इसका फूल राजस्थान का राज्य पुष्प है, और खेजड़ी जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है। यहाँ पर कहा गया है कि जो भूमिगत जल है, अंडरग्राउंड वाटर, जो धरती के नीचे भूमिगत जल होता है वो यहाँ का खारा होता है, और इंदिरा गांधी नहर से सतलज नदी का पानी यहाँ पहुंचाया जाता है ताकि लोगों को पानी मिल सके और यहाँ के जल संकट जो है वो दूर हो सके। ठीक है, ये हमने थार के मरुस्थल के बारे में जाना। नेक्स्ट जो सेकंड प्रकार है भौतिक प्रदेश का वो है अरावती, अरावली पर्वत। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वत फैला है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबा है। अरावली पर्वत राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है, पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान। अरावली क्षेत्र ही राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने बताया है बच्चों के जो राजस्थान का बीच का मिडल पार्ट है, मध्य भाग है, उसमें जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर आपका अरावली पर्वत पूरा फैला है। सबसे पुराने पर्वतों में से एक है ये अरावली पर्वत। दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से ये उत्तर में दिल्ली तक जाता है, 692 किलोमीटर लंबा ये पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला है। जो अरावली पर्वत है वही राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित कर देता है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। तो पूर्वी हो जाएगा आपका पूरा ईस्ट वाला, और पश्चिमी आ जाएगा जिसमें पूरा मरुस्थली आ जाएगा आपका, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। आप मैप में देखो, पेज नंबर 14 पे जो पूरा मैप था भौतिक प्रदेश का, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखो बीच में पूरा दक्षिणी अरावली, ये पूरा आपका अरावली पर्वत श्रृंखला जा रही है, और इसके पूर्व में जो मैदानी इलाका है वो पूरा पूर्वी राजस्थान हो जाएगा, और जो इस साइड पूरा मरुस्थलीय इलाका है ना, बांगड़ और शेखावटी जो प्रदेश पूरा लिखा है वो पूरा आपका ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा, यानी पूर्वी इलाका हो जाएगा राजस्थान का, ठीक है। और आगे ये लिखते हैं कि जो अरावली क्षेत्र है, ऑब्वियसली पर्वत है तो ऊंचा होगा, तो वही ये कह रहे हैं कि राजस्थान का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो भी ये अरावली क्षेत्र ही है। राज्य के खनिज संसाधन मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकना, अधिकांश नदियों का उद्गम स्थान, सर्वाधिक वनस्पति और अधिकांश वन्य जीव एवं जड़ी बूटियों की उपस्थिति, मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाना आदि कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है, जो सिरोही जिले में स्थित है। तो अब ये फायदे बता रहे हैं कि इस अरावली पर्वत से राज्य को कितने सारे फायदे हैं अनेक प्रकार के। जैसा कि पहला है कि खनिज संसाधन बहुत ज्यादा हैं इस भाग में, मरुस्थल के पूर्व की ओर का जो प्रसार है उसको रोकना, यानी जो डेजर्ट है वो रेत जो है मरुस्थल का वो हवा के साथ उड़कर पूर्व भाग में ना आए, राजस्थान के ईस्टर्न भाग में पूर्व भाग में ना आए, वो रोकने का काम किसे करता है? ये अरावली पर्वत ही रोकता है, वरना तो पूरे राजस्थान में डेजर्ट आ सकता था, पूरा राजस्थानी मरुस्थल हो सकता था, पर इस पर्वत श्रृंखला के कारण जो मरुस्थल है उसका प्रसार रुक गया। नेक्स्ट क्या है कि बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थान है, यानी बहुत सारी नदियां इस पर्वत से निकलती हैं, इस वजह से यहाँ काफी वनस्पति है, वन्य जीव हैं, जड़ी बूटियां हैं, उन सब की उपस्थिति है, यानी एक अच्छी खासी जीवन श्रृंखला यहाँ पर चलती है। मानसून को रोककर ये पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश करवाता है, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो हिमालय पर्वत है वो भी मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में बारिश कराता था, जैसे ठीक उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर ये अरावली पर्वत रोक लेता है पूर्वी और दक्षिणी मानसून को रोक लेता है, ताकि पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश हो सके, है ना। और इन्हीं सब कारणों से जो जीवन है वो राजस्थान में इतना हरा भरा चल पा रहा है, और इसी कारण ये अरावली पर्वत श्रृंखला को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जिसे कहा जाता है, 1722 मीटर ऊंची है वो भी राजस्थान में ही स्थित है, सिरोही जिले में, ठीक है। ये हमने जाना अरावली पर्वत के बारे में सब कुछ। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है या जो तीसरा प्रकार है बच्चों, उसका नाम है पूर्वी मैदान। तो अब हम मैदानी इलाके के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही हिस्सा है। राज्य के लगभग 23% भाग पर फैले इस मैदान का चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि, बैड लैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ये बीहड़ चंबल नदी के सहारे कोटा से धौलपुर तक विस्तृत है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो जो मैदानी इलाका है उसमें, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, कि ज्यादातर लोग हमेशा मैदानी इलाकों में रहना प्रेफर करते हैं या पसंद करते हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में जीवन जीना आसान होता है, वहाँ वनस्पति और हर प्रकार के प्राकृतिक संसाधन आसानी से मिल जाते हैं और ज्यादा मात्रा में पाए भी जाते हैं। तो वही लिखा है कि और मैदान हमेशा नदियों से बनते हैं, और जहाँ नदियां होंगी वहाँ जीवन जीना बहुत ही आसान और सुलभ होगा। तो वही लिखा है कि जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है, चंबल, बनास, बाणगंगा और जो और सहायक नदियां हैं उनके द्वारा बना है। ये पूरा मैदानी इलाका इन सब नदियों के द्वारा बना है, जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही हिस्सा है। और यही पूरा मैदानी इलाका अगर बड़े रूप में देखें तो गंगा के मैदान का ही हिस्सा है। लगभग 23% भाग जो है राजस्थान का, वो इस मैदान से फैला फैला है, यानी ये जो राज्य के लगभग 23% भाग पर फैले इस मैदान का, चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। ये कह रहे हैं कि जो ये पूरा मैदानी इलाका है, ये राजस्थान में लगभग 23% एरिया, यानी जो लैंड एरिया है वो 23% जो एरिया है उसको कवर करता है। और जो ये पूरा चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र है, ये बहुत उबड़ खाबड़ है, जिसके चलते इसको बैंड लैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। जो चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि, जिसे हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में बैंड लैंड टोपोग्राफी कहा जाता है, ये वो पूरा एरिया है जो बहुत उबड़ खाबड़ हो चुका है, बीहड़ हो चुका है, और जो चंबल नदी के आसपास का पूरा एरिया है। ये बीहड़ चंबल नदी के सहारे कोटा से धौलपुर तक विस्तृत है। ये बता रहे हैं कि जो बीहड़ है ये कहां से कहां तक फैला है, और राजस्थान का जो सबसे उपजाऊ पार्ट है, यानी जहां खेती और कृषि अच्छे से होती है, जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, वो यही है। और यहां राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो आप खुद सोचो, यहाँ पर मैदानी इलाका है, यहाँ पर रिसोर्सेज ज्यादा हैं, लाइफ जीना इजी है, तो इस वजह से ज्यादातर लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे अच्छे से हैं, नदियां हैं और लाइफ थोड़ी इजी है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ भाग मैदानी है, जिसे माही का मैदान कहा जाता है। इस मैदानी क्षेत्र में 56 गांवों एवं 56 नदी नालों का समूह है, जिसे 56 का मैदान कहा जाता है। ये कह रहे हैं कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में जहाँ बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले हैं, वहां पे माही और सहायक नदियों के द्वारा एक मैदानी इलाका बनाया गया है, जिसको माही का मैदान कहा जाता है। और इस मैदानी क्षेत्र में 56 गांव हैं और 56 नदी नालों का समूह है, इस कारण से इस माही के मैदान का नाम 56 का मैदान भी है। ठीक है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन था जो मैदानी इलाका है राजस्थान का, उसके बारे में। अब जो फोर्थ टाइप है, या जो चौथा भौतिक स्वरूप है राजस्थान में, वो है दक्षिणी पूर्वी पठार, या हाथौड़ी हाड़ौती, हाड़ौती का पठार। तो दक्षिणी पूर्वी पठार या जो हाड़ौती का पठार है, उसके बारे में अब हम जानेंगे। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राजस्थान के लगभग 7% भाग फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो काफी उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में उड़िया, आबू, भौराट, मेसा, उपरमाल और लसाड़िया का पठार आदि हैं। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कैसे प्लेटो रीजन पूरा है। ये कह रहे हैं कि दक्षिणी पूर्वी भाग में बहुत पुराने टाइम से हाड़ावंशी शासक राज्य करते थे, इस कारण से ये जो पूरा प्लेटो रीजन है, या जो पूरा पठार का इलाका है, इसको हाड़ौती का पठार कहा जाता है। राज्य के जो लगभग 7% भाग है जहाँ ये पठार फैला है, वो अधिकांश जो मिट्टी है वो लावा से निर्मित है और काफी उपजाऊ मिट्टी है। फिर उन्होंने नाम बताए हैं उन पठारों के जो यहाँ पर स्थित हैं, अन्य पठार जैसे कि उड़िया, आबू, भौराट, मेसा आदि। आगे कहते हैं कि राजस्थान के मानचित्र को देखकर भौतिक प्रदेशों तथा उनमें स्थित प्रमुख जिलों के नाम लिखिए। तो राजस्थान के मानचित्र को आप देख सकते हैं, उसमें सारे जिले थे, है ना। तो जो दोनों जो मैप है, जो पेज नंबर 14 पे है और जो पेज नंबर 13 पे है, तो आप देख सकते हैं आपको क्या करना है कि सारे जिलों के नाम पहले लिखने हैं, और फिर देखना है कि वो जिला जो है वो किस भौतिक प्रदेश में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दूं, जैसे जैसलमेर है, तो जैसलमेर कौन से प्रदेश में आ रहा है, भौतिक प्रदेश में? ये आ रहा है आपके रेतीला शुष्क मैदान, यानी थार का मरुस्थल में। तो हम लिखेंगे जैसलमेर और सामने लिखेंगे थार का मरुस्थल। तो इस तरह भौतिक प्रदेशों के नाम और उसमें जो जिले स्थित है उनके नाम आप उन मानचित्रों की सहायता से लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे है कि जलवायु व ऋतु चक्र। राजस्थान का जो पूरा जलवायु और ऋतु चक्र है, वहाँ का जो पूरा पर्यावरण है, वहाँ की जलवायु का जो सिस्टम है, किस प्रकार का मौसम वहाँ रहता है और किस प्रकार का ठंड गर्मी आदि यहाँ पर है, तो इन सब चीजों के बारे में हम अब जानेंगे। जलवायु व ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर भारत की मानसूनी जलवायु का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई गई हैं। जहां राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उपआर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व में झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो ये हमें बता रहे हैं कि जो राजस्थान है वो देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां पर 5 प्रकार का जो जलवायु है, 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं। और ये सब क्यों है, इतना सारा जो विविधता है या इतना सब कुछ क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि जो राजस्थान है वहां पर आप देखो कि भारतीय उपमहाद्वीप के एक तो उत्तर पश्चिमी जो डायरेक्शन है वहां पर स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है, उसकी जो समुद्र से दूरी है वो मैटर करती है, यानी समुद्र से वो कितना डिस्टेंस पे है, फिर अरावली पर्वत मौजूद है, और इन सभी वजह से जो राजस्थान है उसको बहुत अलग अलग चीजें उसके जो जलवायु है उसको इफेक्ट करती हैं, यानी वहाँ के जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, यानी किस तरह वहाँ बारिश होगी, कौन सी हवाएं वहाँ आएंगी, है ना, कितनी धूप रहेगी, कितनी ठंड रहेगी, ये सब चीजें मैटर करती हैं क्योंकि जो राजस्थान है उसकी स्थिति इस प्रकार की है। ये बताते हैं कि लगभग 61% यानी जो 61% भाग है वहां पे शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, क्योंकि मोस्टली पार्ट में आपका पूरा मरुस्थल है। फिर अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु बताई गई है, सवाई माधोपुर से उदयपुर तक आर्द्र जलवायु रहती है, और दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 57.51 सेंटीमीटर है, जबकि प्रदेश के मरुस्थलीय क्षेत्र में यह 50 सेंटीमीटर से भी कम है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है, बता रहे हैं कि जो राजस्थान का एवरेज जो रेनफॉल है, यानी जो वार्षिक वर्षा होती है, एक एवरेज वो भी औसत वार्षिक वर्षा जो रहती है राजस्थान में, वो लगभग 57.51 सेंटीमीटर की पाई जाती है या देखी गई है। और जो मरुस्थल क्षेत्र है, थार का मरुस्थल है, वहां पर तो 50 सेंटीमीटर से भी कम ये पाई गई है। ये कहा गया है कि और सारे जो प्रदेश हैं भारत के उनकी तुलना में राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है। राजस्थान के में वर्ष भर मुख्यतः 3 ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक होती हैं। मुख्यतः 3 ऋतु होती हैं राजस्थान में, मार्च से जून तक गर्मी रहती है, जुलाई से सितंबर तक बारिश या वर्षा ऋतु रहती है ना, सितंबर तक, और फिर आपका अक्टूबर से फरवरी तक ठंड रहती है, यानी कि आपका शीत ऋतु रहती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें जलवायु व ऋतु चक्र के ही अंदर, हम अब सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में, यानी कि जो गर्मी का मौसम है वो राजस्थान में किस प्रकार का रहता है इसके बारे में। ग्रीष्म ऋतु के लिए लिखते हैं, इस ऋतु में तापमान सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चुरू आदि जिलों में 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हो जाता है। थार मरुस्थल भारत का अत्यधिक गर्म प्रदेश है, जिसका कारण है रेत, क्योंकि रेत जल्दी गर्म होती है एवं जल्दी ठंडी होती है, अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापमानांतर भी अधिक रहता है। इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा पॉइंट माउंट आबू रहता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई अधिक है। कह रहे हैं कि गर्मी में जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें सामान्यतः जो टेम्परेचर है वो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही रहता है हमेशा। और फिर जो जिलों के नाम दिए हैं ये इन जिलों में खासकर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक नॉर्मल टेम्परेचर पाया जाता है गर्मियों में। जो थार का मरुस्थल है वो सबसे गर्म प्रदेश है और उसकी वजह है रेत, क्योंकि रेत बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। इस कारण से गर्मियों में यहाँ का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है। जो दैनिक और वार्षिक तापमानतर है वो भी इस वजह से अधिक रहता है। जो सबसे ठंडा पॉइंट है राजस्थान में वो है माउंट आबू, और वो ठंडा इसलिए है क्योंकि उसकी ऊंचाई अधिक रहती है। तो इस कारण से गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है और इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा रहता है। पेज नंबर 16 पे ही इन्होंने येलो बॉक्स में लिखा है कि आप जानते हैं राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी पवनों को लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। जो गर्मी में हवाएं चलती हैं राजस्थान में जो बहुत गर्म होती हैं, धूल भरी होती हैं, उन्हें लू कहा जाता है। और इनकी जो स्पीड है, जो इनकी गति है वो 140 किलोमीटर पर आर यानी 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। इतनी भयानक तरीके से यहाँ पर लू चलती है। जो पेज नंबर 17 पर बच्चों आपको वार्षिक तापमान का पूरा मैप दिखेगा राजस्थान का, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो ईयर, पूरे ईयर का वार्षिक जो टेम्परेचर रहा है सेंटीग्रेड में, तो नीचे से देखो 28 डिग्री सेंटीग्रेड टू 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो डार्क रेड है एकदम वो 28 है, यानी तब बहुत ज्यादा गर्मी है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है तो उन्होंने लाइट कलर से उसको शो किया है। पर आप जब मैप देखोगे तो आप उसमें पाओगे जो मैक्सिमम जो वाइट एरिया है वो तो कहीं है ही नहीं, मैक्सिमम पूरा राजस्थान रेड से ही कवर्ड है। और ये पूरा जो मरुस्थल वाला एरिया है ये तो बल्कि और डार्क रेड से कवर्ड है, यानी यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है और उसका रीजन हमने पढ़ा जो कि है रेत, है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु के बारे में, शीत ऋतु के बारे में और मरुस्थलीकरण और अकाल के बारे में। फिर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और ये सब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक का पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है, विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। और आप पूरा रिवाइज करके आपको मजा भी आया होगा कि आपको अपने ही राज्य के बारे में इतनी अच्छे से जानकारी मिली है, उसके जलवायु के बारे में इतना पता चला है। तो ये जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत इजीली सब याद हो जाएगा, क्योंकि आपको आधी चीजें पहले से ही पता होंगी। ठीक, बाय बच्चों।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।